पार्थक्य सिद्धांत पद्धति जी का आदेश, हम लोगों के मन की उपज नहीं। महाप्रभु जी के ये परिकर हैं, नित्य परिकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी और भक्ति विनोद ठाकुर। उन्होंने अमृत प्रवाह भाग से इसमें लिखा है और प्रभुपाद जी ने अनुभाग से लिखा है। तो कह रहे हैं जगत गुरु महाप्रभु इस लीला के द्वारा ये शिक्षा देते हैं, यदि कोई सौभाग्यवान जी कृष्ण को हृदय के सिंहासन पर बैठाना चाहता है तो सबसे पहले हृदय का मल, जहां कहीं कृष्ण नहीं बैठेंगे, जहां पवित्र आसन होगा वहां पर बैठेंगे, इसलिए हृदय में जो बैठेंगे हृदय को एकदम सब प्रकार के मलों को दूर कर देना पड़ेगा। ये मल क्या है? अन्य विलास में कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त दूसरी कोई भी कामना हो तो ये कामना अन्य विलास, कोई भी कामना, यद्यपि यह कामना भावावस्थ तक कुछ कुछ रहेगी, किंतु स्थूल कामना है उनको तो हम दूर कर सकते हैं, इसलिए इनको दूर किया जाए। कर्म, ज्ञान, योग, चेष्टा और आलस्य, प्रमाद, ये सब चीज, और कुटी नाकी माने जितने प्रकार के कू हैं, कू संग, कू भोजन, कू दर्शन, कू संग, जितना कू है, और नाकी माने नदी, जिसके लिए निषेध किया गया है शास्त्रों में, दुष्ट लोगों का संग मत करो, अभक्त मत खाओ, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, अन्नाभिलाष, ज्ञान इत्यादि को दूर रखो, ये सब निषेध है, इनको भी दूर करो। ये कू और ना, टी टी माने ये बंगला में कुटी नाटी होता है। जहां पर भक्ति तत्व के अतिरिक्त कोई भी अभिलाषा हो उनको निकाल दिया। कैसे निकलेगा? हम गृहस्थ आदमी है, कैसे निकलेगा? हम बड़ी व्यवसाय करें, नौकरी कर, अरे भाई इसको इस रूप में ले लो, हमारे परिवार के जितने हैं वो सब कृष्ण के दान दान, मैं इन दासी दासियों को पालन करने के लिए ठाकुर जी के सेवा के लिए अपना जीवन धारण को कर रहा हूं, इसलिए जो कुछ कर रहा हूं मैं भगवान को सेंटर करके भगवान के लिए कर, और सचमुच में ऐसा ही कर, जीव मात्र को भगवान का समझ करके उनकी सेवा कर सकता है, उनको प्रणाम इत्यादि करे, बस सब कृष्ण का संसार हो जाएगा इसलिए, और सचमुच में भगवान के लिए कर। तो जब तक संसार में नहीं है तब तक भाई कुछ खाना पीना भी पड़ेगा, पहनना भी पड़ेगा, संसार वालों से व्यवहार करना पड़ेगा, किंतु उन सब व्यवहारों को भक्ति के अनुकूल करके सब ले सकता है, सब का, और विमुख होकर के करोगे तो तुम्हारा कृष्ण का सेवा भी भक्ति का विमुख हो जाएगा। इस तरह से इन सबको बतलाया है, कंकर, क्रीम, ये सब चीजें, इन सबको दूर किया जाए। कोई भी वासना होती है पहले, वासना से कामना, कामना से इसको रूप में उसको भोग की लालसा होती है, इसलिए कामना ही नहीं रहनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज है हरि विमुखता, वैष्णव की विरोधिता, गुरु की विरोधिता, भक्ति की वासना की विरोधी बात नहीं, ये सबको दूर कर दी है। हरि विमुख का लोगों का जो देखना, जब किसी प्रकार से ये वैष्णव का विरोधी कुछ थोड़ा सा भी जान पड़े, उसके आचरण से वचन से उनका संग मत करो, ना तुम्हारी चित्त वृत्ति को सपट कर। जहां पर सेवा की वृत्ति होती है, भगवान की लीला कथाएं सुनने को मिलती है और भावों की उद्दीपना होती है, ऐसे वैष्णवों का संग करो। स्वजाति स्निग्ध आशय, ऐसे वैष्णव अच्छा तो वही लगेगा जो विरोधी वाले हैं, किंतु ऐसे संगों से दूर रह करके भगवान का भजन करने वाले का संग करो। कुछ लोग ऐसे हैं रेखे वाले का संग करेंगे किंतु वैष्णवों का संग नहीं करेंगे, विषय लोगों का संग करेंगे बीस हाथ पचाल पाड़ेंगे, पचाल माने क्या, बकवास बेकार का करेंगे, किंतु कृष्ण नाम नहीं करेंगे, भगवत भक्ति नहीं करेंगे, इन लोगों का संग सबसे दूर होना चाहिए। जो मायावादी हैं उनका संग सबसे पहले छोड़ो, ये बड़े बड़े कंटक हैं। मायावादी माने क्या, दुर्गा जी की पूजा भी वही है, शंकर जी की भी पूजा वही है, कृष्ण की पूजा भी वही है, जिसका जो इष्ट देव है, चाहे भूत भी इसका इष्ट है, कोई बात नहीं, उसमें आनंद भजन कर। ऐसे लोगों का संग दूर रखना चाहिए। ये लोग मायावाद, अद्वैत मायावाद, मायावादी माने क्या, हम भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, पेड़ पौधे जितने नदी नाले गैया बछड़ा चोर डका सभी ब्रह्म है, और ये संसार झूठा है, सभी ब्रह्म है। इन लोगों का संग यदि भक्ति करना है तो मतलब वैष्णव के बराबर इनको मत समझो, नहीं तो तुम्हारी भक्ति, इनको दूर से प्रणाम करो, असम्मान भी मत करो, किंतु हृदय में स्थान मत करो, इनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, इन सब चीजों को दूर कर किया जाए तब भगवत भक्ति होगी। इसी प्रकार से और भी जो चीजें हैं कि मैल को दूर करके रखा जाएगा, पवित्र आसन होने से ही नहीं भगवान बैठ जाएंगे, साफ कर दिया सिंहासन, किस पर ऊपर बिछाया नहीं कुछ, गलीचा हो नरम रुई का कोई चीज बिछाना पड़ेगा ना, उसमें सेंट इत्यादि दे दो, अच्छी तरह सुगंधित भी हो और कोमल हो मृदु हो मधुर हो, तब तो वो बैठेंगे। ये चीज है भक्ति, भक्ति के द्वारा पवित्रता हो गई, चित्त में कोई ये चीज नहीं, किंतु पवित्रता होने से ही नहीं होगी, उसमें भक्ति का पूर्व होकर के कोमल मटके सुगंधित मधुर वहां पर आसन बिछाओ उसके लिए, और तब फिर उनको वहां तब वो प्रभु आ सकते हैं, ऐसा ही भाव लेकर के चलेंगे तो हम लोगों का गुंडिका मंदिर मार्जन करना सफल हुआ। अन्यथा हजार करो प्रभु को बुलाओगे, भोजन भी दो तो वो न कर लेंगे और न करेंगे। ऐसा साधन हम लोग करने की आज प्रतिज्ञा करेंगे, आज से ही हम कर लें, यदि कोई त्रुटि है उसको निकाल करके फेंक देंगे, काम को लोहमा को, और वैष्णवों के अनुगत्य में, महाप्रभु जी के अनुगत्य में, हमारे रूप सनातन के अनुगत्य में हम लोग इसी तरह से भजन करते कल हम लोग 4:30 बजे महिला मैंने कल ठाकुर जी गंगा रंग से नहीं बैठते हैं, फिर कल महापुर जी से और परसों होगी कुछ अरब की जाए, शाम को हम लोग यहाँ से थोड़ी देर कॉल कर सकता है तो दीपक की तरफ में भी समय आएगा तो हम ले जाएंगे, हम बताओ थोड़ी देर तक तो दे दीजिए, और उसके बाद में दीपक में भी कुछ आगे चाहिए, 6 बजे जब भी हम लोग आरम्भ कर रहे हैं और तब यदि आरम्भ हो जाए तो हम लोग जरूर पहुँच जाए विश्राम, और फिर घर मिल जाएंगे मुड़ करके बंगाली घाट होते हैं आज समाज से। आज भक्ति ठाकुर जी का शिरोभाव और गदाधर पंडित जी का भी शिरोभाव, अभी तक हम लोग 10-15 दिन से गदाधर पंडित के संबंध में ही हम लोग बोल रहे हैं। गदाधर पंडित जी कौन है,
राधा जी
जी, राधिका जी, उन्हीं के संबंध में उन्हीं के भाव की सत्यता में हम लोग अभी तक कभी संक्षेप में कुछ पक्का लोग बोलेंगे तो भक्ति विनोद ठाकुर के कुछ उपदेशों के संबंध में बोलो, उपदेश की महत्ता ही उनके जीवन की महत्ता, चरित्र की महत्ता। वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि बंगाल के रहने वाले थे, कलकत्ते में के पास भी विदानी उनका जन्म था, ये सब हम लोग ये कोई विशेष बात नहीं, उनके उपदेश क्या थे, इनका जीवन का वैशिष्ट्य क्या था, इनके उपदेशों का वैशिष्ट्य क्या था, इसके पर किसी कार्य में
भक्तिविनोद ठाकुर, भक्ति के विषय में उनके विचार इत्यादि को काम लाभ करें। कल हम लोग का समय मिलेगा भक्तिविनोद ठाकुर जी के संबंध में और राधा पंडित के संबंध में हम लोग बोले। भक्तिविनोद ठाकुर जी राधा कृष्ण के नित्य परिकर और महाप्रभु जी के भी नित्य परिकर, दोनों लीला में इस लीला में भक्ति विनोद ठाकुर के रूप में और उस लीला में कमल मंदिर के रूप में चैतन्य महाप्रभु जिस उद्देश्य के लिए आए थे ये भी ठीक उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए, क्योंकि उनके ये परिकर उनकी इच्छा को पूर्ण करना है उनका काम है। भक्ति चैतन्य महाप्रभु जी आए थे, जीव मात्र जितने भी जीव हैं पेड़ पौधे इत्यादि से आरंभ करके चौरासी लाख प्रकार के जीवों में भ्रमण करने वाले जितने भी जीव हैं सब भगवान के साथ हैं। भगवान को छोड़ करके इसके बाद छोड़ करके हम लोग वर्तमान स्थिति में संसार को ही स्पष्ट समझ रखा है और अपनी कपौती संपत्ति इसको मान करता है, शरीर को भी मैं मान करता हूं और इसमें मैं और मेरे कर्तव्य पड़े यह बदलता रहता है। प्रति जन्म में जीव कभी भी नहीं सुखी हो सकता, चाहे वो स्वर्ग चला जाए चाहे वैकुंठ मुक्ति भी मिल जाए, वो कभी भी इन दुखों से छुटकारा नहीं पा सकता, बल्कि मुक्ति में और वो इतना दुख उसको होता है जिसमें अभी दुख होकर के वो मुक्ति जैसा होकर के उस दुख की अनुभूति भी नहीं कर सकता है, ऐसा होता है। इसलिए कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उसको नहीं भगवान और भगवान के भक्त लोग जो किसी भी आते हैं किसी प्रकार से चलाकी से चतुराई से बुद्धिमत्ता से किसी प्रकार से भी ये भूले भट के जो जीव हैं इनको पुनः भगवान के चरणों की सेवा में लगाना चाहिए, यही उन्हों का मूल जगत में आने का। महाप्रभु जी ने जब अपने जीवन में चरित्र में जो कुछ दिखता है जिसको हम अभी लीला में देख रहे हैं ग्रंथों में देख रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी का वही उद्देश्य था, किसी प्रकार से जीव को भगवान के तरफ में मोड़ दिया जाए, चाहे वो संसार में रहे चाहे त्यागी रहे जैसे भी जीवित हो। कृष्ण संसार पर जीवे दया नामे रुचि पर भगवान का जीव भगवान का मुख्य और जीवे दया जीव जो भगवान को छोड़ करके ये दुख में ही सुखी जो अनुभूति करके पागल हो रहा है इसके इस महारोग को कैसे छुड़ाकर भगवान के तरफ से जाए, इसका नाम है दया। दया माने ये नहीं कि किसी को रोटी का टुकड़ा कपड़ा लगता और संसार में जो अभी जिसमें भगवान को जुड़ा हुआ है उन्हीं और चीजों को देकर के जीव को भगवान से और जुड़ा दे, ये दया नहीं है। ये क्या हुई, एक आदमी को पीलिया रोग हो गया और वो घी की तली हुई चीजों को मांग रहा है, अच्छा घी की तली चीज उसको दे दिया जाए तो क्या होगा, वो मरेगा। अब कोई व्यक्ति अरे भाई थोड़ा सा दे दो ना क्या हर है? तो क्या है उसका शत्रु हुआ। इस तरह से जो विषय में हम फंसे हुए हैं और भगवान को भूल रहे हैं उन्हीं विषयों को रूप रस गंध शब्द पर प्रतिष्ठा इत्यादि पर वही चीजें यदि उस जीव को दे दिया जाए तो उसमें तो और दूर करके भगवान से और भी दूर हो जाएगा, ये उसका प्रधान। और जो लोग उनकी इस वृत्ति को कम करके भगवान में उसकी चित्त वृत्ति लगे और क्रमशः भगवान के तरफ में बढ़ता चला जाए ये भक्ति पर आधारित है। एक जीव को भी संसार की कारागार से उसके चित्त वृत्ति को भगवान से प्रकट नहीं किया जाए, इससे बढ़ करके और कोई क्या जगत में जाए। भले ही अभी हम लोगों को इसमें दुख प्रतीत होता है, जैसे वो एक तली हुई चीज मांगता है और कोई उसको नहीं देता है और कहता है इसको मत देना तली हुई चीज, तो वो बिगड़ जाता है और जो मूर्ख है वो भी बिगड़ जाए। अरे देने में क्या दे, देना दो किंतु मर जाएगा उसको पता नहीं। ठीक ऐसे ही विषयों को जब वो संग्रह करके मर रहा है उसी को जब दिया जाए तो ये तो दया का विपरीत हो गया। इसलिए अच्छे डॉक्टर के पास में ले जाकर तो उसकी चिकित्सा करानी, ये दया है। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी का यही जीवन के प्रति दया है। खून दया नहीं, इसको समझना बड़ा चाहिए सचिव और ये रोग कैसे दूर होगा, नाम के द्वारा। नाम के प्रति जब रुचि हो गई, कैसे नाम के प्रति रुचि हो, ये भी कार्य नहीं है। जी तो उसे गाली देगा, उसके ऊपर में बिगड़ेगा, यदि हम उसके इस विषय में बाधा दें तो रूप राष्ट्र बंद शब्द विशेष भोग तो वो जीव और उनकी जो पिए हैं उन सब बिगड़ेंगे। तो भी उसकी परवाह नहीं करते, उसकी चिकित्सा करना ही अतः ये हरिनाम जो है सबसे बढ़कर की उसकी चिकित्सा, उससे बढ़कर क्या उसकी चिकित्सा। किंतु नाम के प्रति रुचि हो, नाम तो सभी लेते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है जो नाम नहीं लेता, अल्लाह खुदा गौर आत्मा परमात्मा क्या क्या ये सब लोग सभी नाम लेते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं। किंतु नाम के प्रति किसी की रुचि लगा देना ये बड़ी सारी है। भक्ति विनोद ठाकुर ने सारा जीवन इस जगत में यही कहा, जैसे एक जीव की रूप भगवान के तरफ ये इसी दया, इसी के लिए उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे और हमारे ब्रह्मचारियों ने उनके संबंध में बताया। गदाधर पंडित जी राधिका जी अभिधर चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण मिली रूप में आए, रामानंद ने देखा भीतर में कृष्ण है और ऊपर में क्या है, उनका प्रत्यंग जितना है प्रति अंग राधा जी के प्रति अंग से अच्छा, और राधा जी का बाहर में प्रकाश और भीतर में क्या है, भीतर में कृष्ण है और बाहर अंतः अंतः कृष्ण बहिर बाहर में रूप गौर राधा जी की अंग दोनों मंत्र। फिर राधा जी क्या है, गदाधर पंडित जी राधा जी कहते हैं उनके साथ में आए नहीं, राधा जी की अंग और कांति को कृष्ण चोरी करके लाए, भीतर में कृष्ण है और उनके भावों को लेकर के और उनकी अंग कांति को लेकर के वही राधा जी भाव से और तो अलग नहीं है, वो ऊपर से गौर से और अभिनय कर रहे हैं राधा जी का। जैसे राधा जी कृष्ण के विरह में ब्रज में रह करके तड़प रही थी और वो मथुरा और द्वारका में है, इसी चीज का अभिनय उनको करना है और तब इसी अभिनय को जगत में शिक्षा दे करके इसका कुछ अंश जीव को देने और कुछ अंश अगवा देने। तो उन्होंने कुछ अंश जीवों को सेवा की भावना, कैसे गोपियां कृष्ण की सेवा करती हैं उनके अनुरक्त में कैसी सेवा की जाएगी, ये समस्त भक्ति का समस्त होगा अंतिम है श्रृंग है, इसलिए इसको कहते हैं श्रृंगार। लोग इसको बुरा समझते हैं किंतु कृष्ण की यह सेवा श्रृंगार रूप में सबसे अधिक श्रेष्ठ रूप में होती है। उसका एक भाव जिसको तत्पर भाव इच्छा मई कहते हैं ये जीवों को प्रदान किया, इसी को मंजरी भाव, और जो कि शांत बात सब बात और मधुर में भी रामचंद्र जी आए, कृष्ण आए, उन लोगों ने और सब रसों को जगत में प्रदान किया, किंतु यह भाव नहीं दिया और न तो कृष्ण आस्वादन किए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी राधा भाव कांति लेकर के विशाखा जी और ये ललिता जी और सब शक्तियों के सामने भेजे करके उस चीज का स्वयं आस्वादन किया और नाम के माध्यम से वो तमाम विशुद्ध जो प्रेम था मुझे वस्तु दिया। तो गदाधर जी क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं जो हमारा अभिनय जो कर रहा है, ये कैसा हमारा अभिनय ये कर रहा है, कहाँ पर स्तुति होती है, कहाँ पर विकृति होती है, कहाँ पर ठीक रूप में दे, वो सब समय बचपन से लेकर के और अंत तक लीला अंत तक जबकि वो गोपीनाथ ने प्रवेश करे सब तक लीला का वाद किया कि कैसे ये कर रहे हैं हमारा अभिनय वो बच्चे। और जहाँ जहाँ कुछ कमी होती है ना वो क्या करते हैं, इंग्लिश रूप में उनको शिक्षा देकर यहाँ आपका ठीक नहीं है,
स्वयं भागवत पाठ करके सुनाते थे वहाँ पर।
जैसे कहाँ पर ऐसा हुआ, जबकि गया से लौट करके आए ना तो वहाँ पर बाहर में जा रहे हैं तो जहाँ पर दूर सुना रहे हैं वहाँ पर बरहा पीड़न
चाहिए घर
नटवर
शुक्लाम पर ब्रह्मचारी घर
बरहा पीड़न नटवर
का
ये भीतर से उनके उस समय अभिनय में कुछ गड़बड़ी हो गई। क्यों, अभी विशाखा जी ने अभी सिखलाया नहीं था पूरा, इसलिए अभिनय में कुछ गड़बड़ी हो गई। तो वो भीतर से उनको भाव पूरा करने के लिए भीतर में पर्दे के आड़ से उन्होंने सिखाया ना यही श्लोक कहा और तब वो भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हाथ और भीतर से वो कह रहे हैं अरे ऐसे नहीं जगह हृदय से तो बोलो हाँ कृष्ण कह रहे हैं और कृष्ण बस जब वो देखा तुम के अंदर में ये भी भाव अरे ये हमारे कहने में कुछ त्रुटि हो रही है। तब गदाधर जी का जो स्वर निकलता था कृष्ण से अभी रसमय और विप्रलम्भ भाव में सुनता उनका निकलता। इस तरह से गदाधर पंडित जी ये राजकाजी आएंगे कोई उनको कुछ अंश के रूप में मानते हैं किंतु अंश नहीं पूरी राजकाजी भी गदाधर के रूप में इस प्रकार से महाप्रभु जी को सब संयोग दिया किंतु चित करके उनको सब संयोग दिया। ऐसे गदाधर पंडित जी का और फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी का आदुर्भाव है शिरोभाव दिवस है उनके चरणों में हम लोग कोटि कोटि बार संदोष करने की बात है उनके भावों को हम लोग थोड़ा सा भी स्पर्श करने हम लोग का जीवन बालिका पश्चान भाव में कल हम लोग 9 बजे ये गुंडिचा मंदिर माता जी स्वामी
सब चीजें हैं। विवेकानंद जी माध्यम के संबंध में इस प्रकार बताया थोड़ा बहुत पतला है, नए नए आदमी ने लिए थोड़ा सा फिर से पतला करके करके विवेकानंद जी संपर्क कर संक्षेप में बतलाएंगे। प्राचीन काल में सतयुग में सतयुग ब्रह्मा के प्रथम पड़ाव थे, राजा थे इंद्रदेव, राजा उज्जैनी अथवा मालव देश में उज्जैनी और एक नाम अवंती मिश्रा अवंती मालव देश में अवंती नाम की राजधानी थी, उसी को आजकल उज्जैन का अभी मणिपुर को लगा था राजा सबसे बड़े धार्मिक थे, वो परम भाव भक्त थे। किसी समय में तो ये ब्राह्मण प्रत्येक ब्राह्मण उनके यहाँ आया और उनकी महिमा बतलाने लगा कि मैं आ रहा हूँ माधव जी को दर्शन करके मैं आ रहा हूँ और उनकी बड़ी महिमा जान, इनकी देखने की बड़ी उत्कंठा हुई। अब वो ठाकुर कहाँ हैं, वो तो चले गए, अब उनको दर्शन करने के लिए बड़ी उत्कंठा हुई और उस उत्कंठा के लिए उन्होंने चारों तरफ में अपने लोगों को भेजा, दक्षिण की तरफ में और पूर्व की तरफ में उन्होंने अपने पुरोहित को भेजा या पुरोहित के लड़के को भेजा जिसका नाम विद्या था। सब जगह से लोग बहुत चेष्टा करते भी एक माधव का पता नहीं लगा पाए, ये समुद्र के किनारे एक कंपनी पर पहुंचे। कुछ लोगों की राय है जहाँ वर्तमान मंदिर है वहीं पर नील माधव है, और कुछ लोगों की राय है अभी नील माधव नाम का एक पर्वत है वहाँ पर भी लोग जाते हैं तो वहाँ पर उनका नील माधव जी का मंदिर है। जैसे कि वृंदावन में भी तीर्थ है और वहाँ पर भी तीर्थ है तो सब मुझे दहरी कथा हो सकता है। अधिकांश लोगों का तो यही विचार है कि जहाँ पर भी ये मंदिर है वहीं पर नील माधव जी थे और उनकी नील माधव की एक मूर्ति अभी भी वहाँ पर विराजमान है पश्चिम या संदर वाले पर, तो वो वहाँ पर समुद्र के किनारे पर पहुंचे और पहुंच करके सोचने लगे, उनको कुछ ऐसे आभास हुआ हो न हो यही कहीं पर वो ठाकुर जी क्योंकि सुंदर प्राकृतिक दृश्य जगह है समुद्र पास में है,
छात्रों का जैसा वर्णन है अभी भी वैसे हो
वहीं पर समुद्र के किनारे पास ही में सबक कल्ली में पहुंचे। शाम हो गई, शाम को बृहस्पति में सबक कल्ली सबक मन होता है गणाश्रम घर से बाहर वहां पर पहुंचे, उनका नाम था विश्वास सबर का, उनके यहाँ पर पहुंचे। वो कहीं बाहर में गए नहीं थे, लड़की ने कहा जो वो पूजा करने के लिए पिताजी गए हैं आप यहाँ पर ठहरिए। शाम को रात के समय में वो लौट करके आए, शाम को उन्होंने लड़की के ऊपर नहीं हाथ दे दिया जो तुम इनकी सेवा कर, वहीं पर सेवा करने लगी। कुछ दिनों के बाद में उन्होंने उस लड़की को उसी को ही विवाह दिया और घर में नहीं रख लिया। लड़के ने कहा उसी से पता लगा, लड़की ने बतलाया हमारे पिताजी नील माधव की पूजा के लिए क्या, ये बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्न लड़की से कहा जो तुम कोई उपाय करो जिससे कि तुम्हारे पिताजी हमसे दिखला दे। तो उसने कहा जो पिताजी हमारे पति को आप उनका दर्शन करा दें, मैं तो प्रतिज्ञा के लिए किसी को नहीं दिखलाऊंगा, तब मैं भी खा करके मर जाऊंगा। तो लड़की को बहुत स्नेह करते थे इसलिए जाकर दिखलाएंगे पट्टी बांध करके आंखों में पट्टी बांध करके और उसको ले गए बैलगाड़ी को चढ़ा करके और लड़की ने सबको दे दिए थे, उसको फेंकता चला गया ऊपर जाकर के ठाकुर मंदिर में जाकर के उनकी पट्टी खोल दी। और छोड़ करके बोलेगा बेटा तुम ये तो प्रतीक्षा करो, मैं अभी फल फूल ले आकर के ठाकुर जी की पूजा करूँ। वो पुष्प चढ़ने करने के लिए और कुछ फल इत्यादि के लिए वो चला गया। इतने उन्होंने देखा एक पुष्करणी में पाठी में एक कौआ डाल पर बैठा था और उंग रहा था, वो गिर गया और गिर करके पुष्करणी में और वो मरा और साथ ही साथ में चतुर्भुज धारण करके बैकुंठ चला देख करके उन्होंने कहा जो तो मैं भी ऐसा करूँ। पेड़ की डाल पर चढ़ करके और उसमें गिरने की तैयारी में थे, इतने में आकाश नहीं ऐसा मत करना, और जिस काम के लिए आए वो पहले जा सके इंद्रसिंह महाराज को इसकी ये सूचना दो। मेरी इच्छा हो रही है कि मैं अब तक तो इनकी पूजा ग्रहण कर रहा था और मैं महाराज की भक्ति अत्यंत अधिक है, इनके हाथों की सेवा ग्रहण कर वहाँ से उत्तर आए। उतरने के बाद में अब उसको भी पता लग गया, उन्होंने उसको भी कहा विश्वापति को अब तक आपकी पूजा में ले रहा था और महाराज इंद्रदेव की पूजा लेने की मेरी सुविधा, जैसे वृंदावन में ठाकुर जी थे उनकी से हमें लोग गड़बड़ी साहब में लगे गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी का, तो जयपुर के महाराजा बड़े भक्त थे उनकी पूजा कर लेने के लिए वहाँ पर चले गए। वो उनकी मर्जी है तो इसलिए उनकी इच्छा हुई, उसने उनको कैद कर दिया और बांध दिया जैसे इनको जाने नहीं दे, इतने की वाजी नहीं इनको छोड़ दो, बहुत कुछ काम होगा तुम्हारा भी कल्याण होगा जगत का भी कल्याण होगा, तब उसने ये छोड़ दिया इनको पट्टी बांध करके कर दिया ले आ जा करके फिर उनको छोड़ दिया। छोड़ने पर अपनी पत्नी से परामर्श करके वो चला गया कि मैं खूब शीघ्र ही आऊँगा और चला गया। महाराज इंद्रदेव को खबर दिया कि अपनी सारी सेना धन खजाना रुपया पैसा स्त्री के परिवार से लेकर के वहाँ से चले और फिर वहीं पर आए आकर के उस गाँव के किनारे आकर के जब चलने लगे तो सबों को देखा किंतु आगे जाने पर देखा कि सब बालू थे, यहाँ तक कि पहाड़ भी पर्वत भी जो था वो भी भर गया है, मंदिर अंतर का कोई पता ही नहीं। अब तो बड़े दुखी थे, लौट करके आए समुद्र के किनारे और कुछ बिछा करके प्रात वेतन के लिए बैठ गए और प्राण दूंगा। इतने हुआ आकाशवाणी हुई कि आप मेरे परम प्रिय भक्त हैं, आप प्राण मत करिए, अब नील माधव के रूप में मैं दर्शन नहीं दूंगा किंतु मैं अब उनके रूप में चार रूपों में आपको दर्शन दूंगा। समुद्र में बहता हुआ आप एक बात कीजिए, पहले यहीं पर एक विशाल मंदिर बनाइए समुद्र के किनारे उच्च भूमि पर जिसको शंख क्षेत्र भी कहते हैं, शंख के समान ही उसकी एरिया, ये भुवनेश्वर से ही आरंभ हो जाती है, भुवनेश्वर से आरंभ करके आवार नाथ इत्यादि और सब उसी के अंतर्गत सख्ती गोपाल और सब उसी के अंतर्गत चलते हैं। वो आप मंदिर बनाइए, मंदिर समुद्र के पास ही उसी भूमि पर बनाए, वहीं पर एक वर्ष शिष्य है, वहीं पर काल भूषुंडी जी तपस्या करते हैं, कहीं कब से वो हैं उसी के आस पास, उन्होंने बहुत दूर दूर से पत्थर मंगाए, जमीन के अंदर 60 हाथ और ऊपर में 181 में कितना हाथ, कितना
मंदिर
का उस तरह से ऊंचाई में बहुत पत्थरों से मजबूत बनाया। बनाने के बाद में अब इसमें मूर्ति स्थापित की जाए, उस समय उन्होंने ब्रह्मा जी को आह्वान किया या ब्रह्म लोग गए ब्रह्मा के पास और ब्रह्मा जी को निवेदन किया कि आप मंदिर की प्रतिष्ठा कर दें। तो उन्होंने कहा कि मंदिर तो स्वयं वो प्रसिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, आप उसको मैं उसको या कोई भी उसकी प्रतिष्ठा नहीं कर सकता, जैसे ठाकुर जी स्वयं गुरु होते हैं ऐसे वो भी मंदिर की है, आप एक बात कीजिए मैं चल करके उसमें ध्वजा एक बार मिलूंगा और ध्वजा का जो देखेगा वही बैठ उनकी बस आए ध्वजा बांध करके से चले गए। उनके आने में और जाने में इतना समय लगा, काफी समय लग गया, और इतने में कितने राजा भी बदल गए। किंतु उनकी पत्नी और उनका जो पुरोहित का लड़का जो आया था, वो सब अभी इनके लिए प्रतीक्षा करके लंबी आई। कुछ दिनों के बाद जब लौटे, तब तक वो मंदिर भी बालू से ढक गया था, और कोई एक राजा थे गालो में, उन्होंने मंदिर का फिर से बाली को हटा करके और मंदिर का संस्कार किया, और कहा कि मैंने इस मंदिर को बनाया। इतने में महाराज आए, महाराज ने कहा कि मैंने मंदिर बनाई, वो कहते कि मैंने मंदिर बनाया। दोनों में विवाद लगा, दोनों मिश्र के साथ भूसुंडी के पास में गए, आप तो बहुत दिन होते हैं, आप बताइए ये मंदिर किसने बनाया। उन्होंने कहा कि इस मंदिर को बनाया है इंद्र सिंह महाराज, किंतु बाली से फंस गया था, इसको साफ करके बालियों को हटा करके उसको रिपेयर किया है ये गावत। बालक जी बड़े ये हुए लज्जित थे, और ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा जो इंद्रजन सरोवर के पास में सुन रहो यही बाहर, तो लज्जा के वहीं पर रह गए और मंदिर पर भी सबसे इनकार हुए। अब विक्रम उसमें है नहीं, तब वो समुद्र के किनारे कुछ स्थान कुछ को लेकर जो बैठ गए बिना खाए पिए मरे। अब आशा वहां से ये हुई, देखो एक पेड़ का लाल पेड़ का झड़ाएगा तो उसको विष्णु चक्र का उसमें स्थान रहेगा, आप उसकी पूजा करके निकल जाए। कुछ दिनों के बाद प्रतीक्षा करते रहे, वो लाल पेड़ का सब मजबूत और मोटा वो सिल्ली वहां से आए हर, उसको उन्होंने निकलवाने की चेष्टा की, हाथियों को लगवाया, बड़े बड़े लोगों को लगाया, हजारों आदमी मिल करके उसको निकालने की चेष्टा की, सख्त मत मान। फिर कुछ आकाशवाणी हुई या किसी ने कहा कि वो जो विश्वावसु और जो पुरोहित पता लगाने ये दोनों आ करके यदि इसको उठाएं तो उठ सकता है। फिर दोनों को बुलवाया गया, सोने का रथ बनवाया और ये दोनों वहां पर गए, उनकी पूजा करके हाथ जोड़ करके कहे प्रभु आप रथ में पधारिए, बस स्पर्श करने के साथ साथ अपने आप उठ करके वहां पर ले जा करके कहां ले आए जहां जगदमंडप बनाया था विशाल जगह, और ब्रह्मा जी ने वहीं पर कितने जगह दिए थे इनका दिन में वहां पर जगह दिया, वहीं पर ले करके गए जहां पर मूल मंदिर है वहां विशाल एरिया में मंडप बनाया गया, और सहस्र जितने राज्य भर के कारुकार्य करने वाले थे उनको बुलाया। ये इससे इसे विग्रह बनाना है जगन्नाथ बलदेव वज्र और चक्र, कोई भी आकर के कुछ न कर सका, उनके अस्त्र शस्त्र यहां पर मारे और लोहे जैसा ठंड करके टूट करके गिर गए। कुछ दिनों के बाद में एक बूढ़ा आया, बड़ा तपस्वी, और कोई नहीं था स्वयं जगन्नाथ जी, अपना नाम बतलाया कोई अनंत महाराणा, अनंत महाराणा ने अपना नाम बताया। उन्हें बताया कि मैं मूर्ति तैयार कर दूंगा, किंतु 21 दिन का समय चाहिए, घर में बंद करके करूंगा, कोई बीच का न करे, कोई दादा जाना खुले। सब लोग राजी हो गए, घर के अंदर में ले करके गए और रख दिया। 14 दिन बीत गए, किंतु कोई ठंड खून कोई भी आवाज खट खट कुछ नहीं हुई। रानी ने कहा ये दुर्घटे तो खाई, दरवाजा खोला नहीं, पानी नहीं पिया, किसी न जाने क्या हुआ, ये मर गया था, फिर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, खुलिए। जबरदस्ती राजा से खुलवाया, और जो ही खुलवाया तब तक वो तो हंस करके अंतर ध्यान हो गए, और मूर्ति जैसे कि थी उसी रूप में, गोल गोल आंखें, नाक तक बन पाई थी, हाथ यहाँ तक बन गया था, उंगली से उंगली कुछ भी नहीं थी। राजा बड़े दुखी हुए, हमने दादा जी और ये मूर्ति ठीक से प्रकाशित नहीं हुए, और वो ब्राह्मण चले गए। मंत्री का ने कहा जैसे नहीं, वो साधारण आदमी थे, वो स्वयं जगन्नाथ जी थे, अपने से अपने रूप में इन्होंने अपने को इतने रूप में प्रकाशित किया है। अब जो हो गया हो गया, अब अधिक चिंता मत किए सर, अब इसी को ही प्रतिष्ठा करेंगे। इसने मैं आकाशवाणी भी ऐसे ही और लोगों ने सब परामर्श दिया जी इसी विग्रह को वहां पर। इसलिए वो जो पहले से आए हुए थे जो कारीगर जिनको बुलाया गया था हजारों लोग, उनको लगा दिया मन ये तीन रथ बनाने के लिए। तो वो लोग एक महीने तक वो सब रथ बना रहे थे और इधर में 21 दिन में ये बना रहे थे ये। तो उन लोगों ने तीन रथ बड़े विशाल विशाल ऊंचा बनाया।
ये रथ का
इससे भी बहुत ऊंचा यहाँ से सत्तर का 16 पहिया, किसी में कुछ, किसी में 18 बताए और किसी में 12, सुभद्रा में 12, कृष्ण में 16, 14, 12, ये इस तरह से बनता है बड़े विशाल विशाल रथ। वो तीन चार महीने लग जाता है शायद तो रथों को ही, प्रति वर्ष नया नया बना रहे नई नई लकड़ियों का।
अक्षय तीज के दिन शुरू करते हैं,
अक्षय तीज से आरंभ करते हैं और आज तक वो कम्प्लीट हो रहा, रात भर काम चलेगा और नाना प्रकार के किंगड़ी वस्त्र दर्पण इत्यादि उसमें मोर के पंख इत्यादि सब तरह से उसे सजाते हैं, विभिन्न प्रकार के चीजें तैयार करते हैं। तब वो कल के दिन भी जाता है। तो इस तरह से उनको लगाया उसमें, अब उसी को आज दिन विचार मंदिर माफी। अब ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि ऐसा ठाकुर जी क्यों हुए, एक लीला ये दिखलाने के लिए। मैं प्रेम के वशीभूत होकर के मैं द्रवित हो जाता हूं इस चीज को दिखलाने के लिए। ये बड़े करुणाशील और बड़े दयालु हैं, ये पति पावन हैं। ये अभी भी वहां पर पूर्वी गेट पर पति पावन एक वहां पर मूर्ति है। कुछ लोग कहते हैं चैतन्य महापुरुष जी ने स्थापित की, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, एक मुसलमान राजा था उसने आक्रमण किया वहां और आक्रमण किया, आक्रमण करके एक हिंदू नारी को पकड़ करके ले गया जबरदस्ती। वो किंतु भक्त थी और अब जबरदस्ती उसको अपने घर में ले गया और उसे जबरदस्ती शादी की, उसी से एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम था साउल। वो बचपन से माता जी के अनुसार में वो भक्त था। माता जी रोती और कहती और सब समय जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए उत्कंठा प्रदान करती। उसकी भी बड़ी इच्छा हुई कि मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा, इसलिए वो भक्त मुसलमान के रूप में हिंदू लोग उसे ग्रहण नहीं करते। तो वो आया वहां और भीतर में जाना चाहा, भीतर में इंदिरा गांधी को नहीं जाने दिया, तो जिसने कि वो प्रधानमंत्री सिंह को नहीं जाने दिया, तो उस साल में वो क्या कहा नहीं जाने दिया। हिंदू लोग सभी चारों ब्राह्मण वैश्य सभी शुद्ध सभी चले जाए, किंतु और कोई नहीं जाएगा। अभी भी अंग्रेजों लोगों को भी नहीं जाने देते। तो वो बाहर से रह करके और प्रार्थना करने लगा, बिना खाए पिए गेट से बाहर रह करके भूखा ठाकुर जी से रहा नहीं गया। रात में दरवाजा खोल करके और उस दरवाजे पर आकर के बैठ गए और वहीं से उसको दर्शन दिए। इसलिए उनका नाम हो गया
पवन जगन्नाथ देव।
अब फिर वो गए नहीं, तो उनकी प्रतिभू विग्रह वहां पर भीतर में हुई और असल जगन्नाथ जी वहीं पर रह गए। आज तक भी वो वहीं पर बैठे हैं। कुछ लोग कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जी समस्त लोगों को जाति निर्विशेष सब लोगों को दर्शन करने के लिए वहीं पर उनको पकड़ा दिया, जैसे भी वो पतित पावन के रूप में। इसलिए जगन्नाथ जी बड़े पतित पावन थे और इसीलिए वो सबको दर्शन देने के लिए ही ये द्वादश दूज से लेकर कल है दूज ना
कल से लेकर के एकादशी के दिन शायद लौटे, कितना दिन है, नौ दिन
लौटे,
दसवें दिन लौटे। इसीलिए वो नगर भ्रमण करते हैं कि केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे नहीं, जो ही नहीं, किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति हो, और ऐलान कर देते हैं कि मैं, मुझे कोई भी दे सकता है वो, और सबका भोग ले लेते हैं। जो कोई जाएगा, जो कुछ भोग लेगा, जो कुछ इच्छा हो, जो कुछ मैंने शास्त्र विरुद्ध चीज नहीं, सात्विक वस्तु हो, फल है, कंद है, दूध है, और नारियल है, नारियल का भोग खूब लगता है वहाँ, और मिठाई इत्यादि जो कुछ भी हो, सीधे में भोग लगता है, मूली लेती है, तुलसी लगता है, ये सब जितने चीजें हैं वो सब तरह के फल इत्यादि लगते हैं। बस भोग देने में कोई कष्ट नहीं, बस वहाँ से ले लो उनको दिखला दो, बस इतने में वो अपने दृष्टि से भोग लगा देते हैं, कितने प्रतिष्ठा होंगे। लोग परीक्षा करते हैं कि खाते हैं कि नहीं, और जैसे मुरारी गुप्त खिलाया ना
लोग,
ऐसे वो खा लेते हैं और वो बतला देते हैं हाँ हमने खाया
आलू।
बहुत इसके प्रमाण है, साक्षात प्रमाण है, जो जो देना चाहेगा उसको प्रतीति करा देते हैं कि हाँ हमने। महाप्रभु जी ने कहा कि ये तेल ठाकुर जी को बत्ती जला दो, बत्ती जला दो, वो ठाकुर जी को लग जाते, किंतु उन्होंने क्या किया, पटक दिया। यदि सब कुछ उनको दिया होता तो वो मिल जाता। सुनते हैं कि कहीं कोई भक्त था, वो तेल लेकर के और ठाकुर जी के सिर पर ढाल रहा है मन ही मन में जगन्नाथ जी को, और वो अपने घर में गिर रहा है, और वहां से जाकर के खबर आई है उसका जितना तेल है सुगंध सब वहां पर आ रहा है जगन्नाथ जी।